वैसा तो योग सब्जेक्ट बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कोई भी मुरली बाबा की ऐसी नहीं सुनी होगी आपने जिसमें बाबा बार बार क्या कहते, बच्चे मुझे क्या करो, याद करो, बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि याद का सब्जेक्ट ही हमारा बहुत मुख्य सब्जेक्ट है और इससे ही चारों बाकी जो तीन सब्जेक्ट है वो भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि योग बल संसार का सबसे बड़ा बल है। योग बल के द्वारा ही हम संसार को बदल सकते हैं, अपने अंदर के संस्कारों को भी बदल सकते हैं, साथ में वायुमंडल को भी बदल सकते हैं। योग बल से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं, योग बल से ही असंभव बातें भी संभव कर सकते हैं। योग की महिमा बहुत ही अपरंपार है। हम स्वराज्य अधिकारी भी बन सकते हैं, कर्मेंद्रिय जीत और कर्मातीत भी बन सकते हैं। सब कुछ किसे संभव है? योग से ही संभव है। तो हमें योग के टॉपिक के ऊपर बहुत ही क्या करना है, अटेंशन देना है। तो योग को हम यथार्थ और पावरफुल कैसे करें? वैसे देखो योग ये दो प्रकार का, एक तो बैठ करके योग और उसके बाद फिर कर्म में योग, दोनों भी हमें कला चाहिए। जिसे केवल एक ही, कई कई को क्या होता है, कर्म में योग करना अच्छा लगता है लेकिन बैठ करके योग मजा नहीं आती, जब बैठेंगे तो व्यर्थ के तरफ चले जाएंगे। कई को क्या होता है, कर्म करते तो कर्म कॉन्शियस ही बन जाते हैं और जब बैठ गए तो फिर बैठ कर ही करेंगे, लेकिन नहीं, ये दोनों भी कला चाहिए। बैठ करके भी योग आपको लगाने की कला हो और साथ में कर्म करते समय भी बाबा की याद करने की कला हो, तब आपको बहुत आनंद आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें बैठ करके जब योग का अभ्यास करते हैं उसको हम पावरफुल कैसे करें। जिस समय हम बैठ करके योग करते उसको यथार्थ और पावरफुल योग कैसे करें? देखो सबसे पहले हमें बैठने का इंटरेस्ट चाहिए अंदर से कि मुझे योग करना है। बैठने की आदत हो और बैठक योग के लिए भी सहायक क्या होते हैं, कर्म में जितना आप योग करते हैं वही आपको बैठक योग में मदद आएगा। जिसको कर्म में योग नहीं लगता उसको बैठक योग करने में कठिनाई महसूस होती, इसीलिए हमें कर्म की भी कला और बैठक की कला। तो जब बैठ करके योग करते हैं उस समय जब हम योग का अभ्यास करते हैं, वो बैठक तो आपको सुनाई है पहले, कैसे हमें बैठना है, आंखें खोल करके बैठना है। और आंखें खुली भी क्यों रखनी है, क्योंकि कई सोचते हैं ना आंखें खोलने से क्या होता है, सामने वाला सब चीजें दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कई कई सोचते हैं हम अगर बैठ करके जब योग करते हैं उस समय आंखें बंद करते हैं तो हमारा योग बहुत अच्छा लगता है, कईयों का ये भी होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप आंखें खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना ही दिखाई पड़ेगा सामने वाला, लेकिन जब बैठ करके आंखें बंद करके योग करेंगे तो पीछे का दूर का भी दिखाई पड़ेगा आपको, खेती में जो क्या चल रहा है वो भी दिखेगा आंखें बंद करने से। तो इसीलिए आंखें खोलो तो अच्छी बात है, इतना सामने का ही दिखाई पड़ेगा, इसीलिए आंखें खोल करके हमें योग करना है, कभी भी आंखें बंद नहीं करनी। और जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो उस समय मन और बुद्धि वो कैसे लगाई, क्या करे, वो कला जरूरी है। क्योंकि हमारा जो योग है, चाहे कर्म का योग चाहे बैठ कर वाला योग, दोनों इन दोनों चीजों का खेल है, मन और बुद्धि का है। ऐसा नहीं कि आप योग में लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे तो बैठे मतलब कोई आप योग में होंगे, अगर आपका मन बुद्धि ऊपर नहीं है, बाबा के पास नहीं है, तो आपका योग वो है ही नहीं। तो इसीलिए जब हम योग का अभ्यास करते हैं मन और बुद्धि, तो सबसे पहले ये दोनों के बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि एक नेत्र है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो बुद्धि रूपी नेत्र को क्या करना है, काम देना है। कौन सा काम देना है, बुद्धि के द्वारा उस परमधाम को देखने में बुद्धि को क्या करना है, लगाना है। और मन से क्या करना है, उसके बारे में सोचना है। बुद्धि देख रहे और मन उसके बारे में सोच रहे। अगर केवल हम योग में बैठे हैं और आंखें देख रहे और मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा परमधाम को, बाबा को, परमधाम में बाबा को नहीं देख रहे, बुद्धि कहीं और है, तो आपके मन में चिंतन भी कुछ और चलेगा। तो इसीलिए हमें बैठक योग जब करते हैं उस समय ये दो चीजें, मन और बुद्धि, यथार्थ बाबा के ऊपर जानी जरूरी है। अगर बाबा के बजाय कहीं और चली गई, समझो जैसे प्लग में जब तारे डालती है निगेटिव और पॉजिटिव, तो क्या हो जाता है, बल्ब जल जाता है। अगर एक तार भी नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बल्ब जलेगा ही नहीं। इसी तरह मन और बुद्धि की तार जब परमधाम में बाबा के ऊपर जाती है, तब उस बाबा के अंदर की जो शक्ति है, करंट है, वो आत्मा में आएगा और आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। अगर योग में बैठे हैं, भले बाबा के कमरे में बैठे हैं, लाल लाइट चल रही, गीत बज रहे, लेकिन मन और बुद्धि ऊपर गई नहीं, तो जब आप योग से उठेंगे, योग करके, तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप चार्ज हो गए, आपकी आत्मा की लाइट जली हुई है, आत्मिक स्थिति है, उसका अनुभव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आप योग कर रहे थे, आपकी मन और बुद्धि की तार आपने परमधामे बाबा के ऊपर नहीं लगाई। तो योग अभ्यास में हमारी मन और बुद्धि बाबा के पास जाना जरूरी, क्योंकि ये भक्ति मार्ग नहीं। भक्ति मार्ग में क्या किया, माला जप रहे, राम 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 कहेंगे, देखना भाई बिल्ली दूध न पिए, राम राम राम, मना हाथ से तो ये माला फेर रहे, लेकिन ध्यान कहां है। तो इसी तरह अगर योग का अभ्यास आप करने बैठे हैं, समझो बाबा के कमरे में बैठे या अपने सेंटर पर बैठे हैं, और उस समय आप सेंटर पर बैठे हैं, तो जरूर नहीं कि आप कोई योग में है। अगर आपकी मन और बुद्धि वहां गई ही नहीं, तो आप योग में नहीं थे। तो इसीलिए आपकी मन और बुद्धि बाबा के पास जानी जरूरी, नहीं तो कई क्या होते हैं, जब बैठेंगे तो व्यर्थ बातों का चिंतन चलेगा। मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है, और योग में बैठे, फिर वो योग से उठेंगे कहेंगे मेरा योग तो लगा ही नहीं आज, योग में तो मजा ही नहीं आई। क्यों नहीं मजा आई, क्योंकि मन बुद्धि आपका यही था। अगर मन बुद्धि यहां है, तो आपको कैसी शक्ति मिलेगी, कैसी पावर मिलेगी। इसीलिए योग की अनुभूति करने के लिए यथार्थ योग उसको कहेंगे, आपकी उस एक घंटे में मन और बुद्धि कितना समय तक बाबा के पास रही, आप चेक करना है। आप जब भी एक घंटा योग किया, उस एक घंटे में आप बाबा के पास कितने थे, बाबा के कमरे में कितना समय थे वो महत्व का नहीं, लेकिन बाबा के कमरे में बैठ करके आप ऊपर कितने थे, मन और भी बाबा के पास कितनी थी, वो महत्व का है। क्योंकि तब ही आपके अंदर वो बाबा की शक्ति क्या हो जाएगी, आ जाएगी। लेकिन माया आपको क्या करते हैं, ऊपर ठहरने भी नहीं देती। वो क्या करते हैं, मन बुद्धि को कहीं ना कहीं व्यर्थ बातों का चिंतन चलाएगी। इसलिए ये मेहनत है, यही बाबा कहते हैं, बच्चे ये मेहनत करो, मन और बुद्धि ध्यान आपका कहां लगा रहे, ध्यान बाबा में लगा रहे। जब ध्यान जाएगा तो मन भी क्या हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, क्यों हमारा ध्यान ऊपर नहीं जाता, क्योंकि जब हम योग का अभ्यास करते हैं केवल मन को, मन से संकल्प चलाते हैं, लेकिन नहीं, मन के संकल्प के साथ साथ बुद्धि को भी क्या करना है, लेके जाना है। तो बुद्धि कैसे लेके जाना है, समझो आपने मधुवन में ओम शांति भवन देखा है और अभी आपको कहा कैसे आपका ध्यान जाता है, देखो इसी समय मधुवन में वहां ओम शांति भवन है, वहां बहुत अच्छी लाइटिंग की है, वहां बहुत अच्छे झंडे लगे हैं, और जैसे आप अनुभव करें कि अभी आप ओम शांति भवन जो सामने रोड है उस रोड से आप क्या कर रहे हैं, ओम शांति भवन की तरफ चढ़ते हुए जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ करके, और गए आप बिल्कुल वो सामने सूरज का बहुत अच्छा कांच का मॉडल बना हुआ है उसको आप देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है अभी। उसके बाद आप वहां से अंदर ओम शांति भवन में गए और वहां बहुत अच्छा एक लक्ष्मी नारायण का जो दरबार का सतयुग का चित्र लगा हुआ है ओम शांति भवन में उसको आप देख रहे हैं। वहां से आप क्या कर रहे हैं, जो वही उसके बाजू में सर्व आत्माओं का पिता का चित्र लगा हुआ है, बीच में ही ब्रह्मा बाबा है उसी चित्र में, उसके बाद वो चित्र देख करके आप जैसे बाबा के कमरे में आ रहे हैं जो ओम शांति भवन के अंदर है वो, उसको आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर आप वहां से ओम शांति भवन में वहां से नीचे रोड पर आए, रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड क्रॉस करके फिर पांडवन के गेट के अंदर पहुंचे और सामने ही बहुत अच्छा कृष्ण वाला गोला वाला चित्र लगा हुआ है, गोल्डन चित्र, हाथ में गोला है, और वो चित्र देख करके फिर आप अंदर बिल्कुल आंगन में पहुंचे, वहां से आप जो शांति स्तंभ है उसको आप देख रहे हैं, और उसके ऊपर लिखत लिखी है पवित्रता स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, वो पढ़ रहे, नीचे लिखा है सब तीर्थों में महान तीर्थ आबू तीर्थ। तो वो चारों तरफ चक्कर लगा करके फिर आप बाबा के झोपड़ी में आए, और बाबा के झोपड़ी में तो बहुत अच्छा गद्दी ला रखा है, और वहां बाबा का जो लिख रहे ब्रह्मा बाबा वो चित्र है, और आप वहां योग करके वहां से आप बाहर आए। तो जैसे आपको जैसे कहा वैसे अभी आप वहां ही गए थे, भले यहां देख रहे मेरे तरफ लेकिन वहां सब आपको दिखाई पड़ रहा था वो जैसे जैसे आपको कहा। तो कैसे गए थे अभी आप, ये बुद्धि के द्वारा गए थे वहां। तो यही योग में भी हमें क्या करना है, यही करना है। जब आप योग का अभ्यास करते हैं, हम जो जो चिंतन करते हैं वैसे वैसे क्या करना है, हमें वो दृश्य को देखते रहना है। जब आप चांद सूरज के तरफ जा रहे तो जाते जाते तुरंत जाओ नहीं, लेकिन क्या करो, जाते जाते वो सीन देखते हुए अब अव्यक्त वतन में पहुंचे, वो अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। जब मैं नीचे से फरिश्ता ड्रेस पहन करके लाइट का शरीर पहन करके जैसे ऊपर जाते हैं, तो जाते ही ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए अव्यक्त वतन में प्रकाश में शरीर में। पहले तो बैठे थे लेकिन फिर खड़े हुए और मुझे क्या किए, अभी गले मिल रहे मेरे, गले मिल करके मुझे सामने बिठा दिया, और बिठाने के बाद कह रहे कि बच्चे आप कैसे आए, तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे करके बाबा आपको शक्ति दे रहे, दृष्टि दे रहे, और दृष्टि देते देते जैसे आपके मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे, आपको वरदान दे रहे, और आप बाबा को कह रहे कि बाबा हम आपसे मिलने आए थे, लेकिन डायमंड हॉल तो बहुत छोटा सा है और उसमें काफी सारे लोग भाई बहने आए थे, और आपको आपके पास स्टेज पर आने के लिए तो टाइम ही नहीं मिला, तो इसीलिए हम मेरा दिल कहा कि सोचा कि चलो मैं आपसे मिल करके, क्योंकि आपने कहा था कि आप अव्यक्त वतन में आओ, वहां मैं तुम्हें एक घंटा क्या चार घंटा भी बैठ करके मिल सकता हूँ, गले भी लगा सकता हूँ ना, ऐसा करके बाबा आपको गले लगा रहे और साथ में दृष्टि दे रहे, फिर आपको भोजन खिला रहे, जैसे यहाँ दादी का जो सीन सामने आता ना, तो ऐसे आपको अव्यक्त वतन में बाबा भोजन खिला रहे और बहुत अच्छी दृष्टि दे करके जैसे आपका फिर जैसे प्रकाश में शरीर गायब हो जाता है, फिर आप एक ज्योति स्वरूप आत्मा, और वो आत्मा बाबा ने ब्रह्मा बाबा के ने जैसे अपने हाथ में रखे, और वो जैसे बाबा उस ज्योति को भी पावर दे रहे, शक्ति दे रहे, और फिर बाद में आप अनुभव करें मैं हजारों सूर्य से एक शक्ति ज्योति हूँ, और उसी ज्योति को बाबा ने ऊपर उछाल दिया, आप सीधा ही परम धाम में पहुंच। तो जैसे अभी आप जैसे कहा वैसे वहां का सीन याद आ रहा था, जब मैं ये कह रहा था उस समय आपको कोई ये याद नहीं आया कि शांति स्तंभ वगैरह वगैरह, तो ऊपर कहा तो वहां भी आप पहुंचे थे बाबा के पास। कैसे पहुंचे, बुद्धि के द्वारा। तो ये पूरा बुद्धि का खेल है, लेकिन टोटल में केवल वही रहे, कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें याद ना आए, ये हमें क्या करना है, थोड़ा सा अटेंशन रखना। और जब आप ऐसे ऊपर रहेंगे मन और बुद्धि, तो उसी घंटे में आप चार्ज हो जाएंगे, आपकी आत्मा की ज्योति जो बुझी है वो जग जाएगी और आपको उसमें बहुत अच्छा सुख मिलेगा। तो कोशिश करके हम जब योग का अभ्यास करते हैं, योग में नीचे की बातों को याद नहीं करना। वो याद क्यों आते हैं, क्योंकि बुद्धि चली आती है। तो हमें बुद्धि को क्या करना है, बुद्धि रूपी बुद्धि एक नेत्र है। ऐसा नहीं कि आप योग में बैठे तो आपकी आंखें बाबा के चित्र को देख रहे हैं, आंखें बाबा के चित्र को देख रहे तो आपका कोई योग चल रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ये आंखें देख रहे लेकिन मन रूपी आंख अगर बुद्धि रूपी आंख अगर कुछ और है तो आपका योग नहीं है। इसीलिए बुद्धि कहां है ये मत होगा, आंखें खुली है साथ में बुद्धि रूपी नेत्र भी परमधाम में बाबा को देख रहे, अव्यक्त वतन में बाबा को देख रहे। जब आपकी ये स्थिति है तो आपके कान खुले हैं, आंख खुला है, तो भी आपको यहां कौन आया क्या हुआ ये कोई बातें आपको ना दिखाई पड़ेगी ना सुनाई पड़ेगी, ये स्थिति चाहिए। तो इसीलिए हमें योग का अभ्यास करते उस समय बुद्धि को क्या करना है, अव्यक्त वतन में परम धाम में लेके जाना। बुद्धि जैसे मम्मी पापा करते ना, जैसे जब अंधेरा बाहर होता है उस समय बच्चों को कहेंगे माँ बाप, देखो बेटा बाहर नहीं जाना, अगर तुम बाहर जाएगा तो तुमको क्या करेगा, शेर खा लेगा, बाहर अंधकार है। दोनों को क्या करते, बच्चों को अंदर रखते डराते। तो इसी तरह मुझे भी क्या करना है, मेरा मन और बुद्धि मेरा आत्मा का बच्चे है, दोनों मन और बुद्धि दो बच्चे है, ये दोनों बच्चों को परमधाम में लगा करके रखना है। और उसको मैं आत्मा पीछे बैठी हूं और दोनों बच्चों को कहा है कि हे बुद्धि रूपे बच्चे तुम बाबा को देखो, हे मन रूपी बच्चे तुम क्या करो बाबा के बारे में सोचो। तुम दोनों को नीचे नहीं जाना, नीचे जाएंगे तो तुमको माया शेर क्या करेगा खा लेगा। तो ये दोनों बच्चों को लगातार परमधाम में रखना लंबा समय तक, यही क्या है योग है। लेकिन होता क्या है, बुद्धि रूपी बच्चा मन रूपी बच्चा कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, बैठे योग में लेकिन तुरंत चला जाता है। जैसे हम कई बार एक एग्जांपल देते ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे समझो कोई माता कैसे मतलब बुद्धि और मन कैसे चला जाता है, देखो योग में बैठते लेकिन चला जाएगा। जैसे कई माताएं समझो योग करने के लिए जा रहे और जाते जाते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी आई है रास्ते में, वो गाड़ी वाला जा रहे तो अचानक देखेंगे हाँ चलो आज शाम की इसकी सब्जी बना देंगे, पहले सोचेंगे जाकर के योग करके जाते समय लेके जाएंगे। फिर गए सेंटर पर, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, सामने कोई योग करा रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ शक्ति स्वरूप हूँ आनंद स्वरूप। फिर अचानक याद है अरे मैंने तो थैली लाया नहीं, वो बैंगन कैसे ले वो सब्जी कैसे लेके जाऊं। फिर कहेंगे कोई बात नहीं उसके पास तो कोई प्लास्टिक थैला होगा ही उसमें लेके जाएंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ शक्ति स्वरूप हूँ आनंद स्वरूप हूँ। फिर अचानक याद है अगर वो तो पैसे पर से तो लाई नहीं, चलो छोड़ दो कुछ और दूसरा बना देंगे। फिर दोबारा शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ शक्ति स्वरूप हूँ आनंद स्वरूप हूँ। फिर अचानक याद है अगर वो तो गैस के ऊपर जो मैंने दूध रखा था वो तो मैंने बुझा ही नहीं, शायद कोई बुझा ही देगा, चलो मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ शक्ति स्वरूप हूँ आनंद स्वरूप हूँ। फिर अचानक याद है अगर वो तो घर में मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए कुछ चने वगैरह बना दूं, लेकिन रात को मैंने सोचते सोचते ऐसे ही भूल गए भिगोना, और अभी कैसे बन सकते एक सेकंड मतलब एक घंटे में, तो छोड़ दो कुछ और बना देंगे, दो कोई दाल वगैरह बनाई दे। फिर कहेगी मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ शक्ति स्वरूप। ऐसे करते करते लाल लाइट चल रही थी वो सफेद चालू होगी, योग का टाइम पूरा हो। तो ये माताओं की जो समस्या है, माताओं को याद आएगी, भाइयों की इस ये है, जब अगर आप देखेंगे सचमुच साक्षी होकर के जब आप योग का अभ्यास करते उस समय क्या चलता है यही चल। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपका बुद्धि को आपने समझा नहीं, और बुद्धि को काम नहीं दिया, बुद्धि को आपने क्या किया, कोई काम नहीं दिया, कुछ नहीं, ऐसा ही छोड़ दिया, और उसके कारण फिर ये सब चल रहा है। अब फिर एक घंटा बैठेंगे बस लगेगा हमने एक घंटा योग किया, सामने वाला बैठने वाला सोचेगा भाई इन्होंने आधा घंटा योग किया, क्योंकि आपकी आंखें खुली थी और आप बाबा के चित्र को भी देख रहे, गीत भी सुन रहे, लेकिन आपका रियली योग कहाँ था? हा? वो योग था बैंगन योग या वो सब्जी वाला योग या वो छोले वाला योग चल रहा है, बाबा वाला योग नहीं था। अगर यहां भी समझो बाबा के कमरे में बैठेंगे भी शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, फिर अचानक यार वो तो अच्छा हो गया, कल परसों जो कल्चर प्रोग्राम हुआ था उसका कैसेट लेके जाएंगे, सबको दिखाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर अचानक याद अगर वो कैसेट लेके जाएंगे तो थोड़ा स्टिकर वगैरह पेन भी लेके जाएंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर अचानक याद है कुछ भारी खरीदारी भी कुछ करके लाएंगे क्योंकि अभी जाना है कल वापिस, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, फिर अचानक सोचेंगे अपने सेंटर के दो चार भाई अगर साथ में आए योग करने के लिए, सोचेंगे वो पीछे वाले उठ करके गए तो नहीं हो गए, ऐसा ही होता है ना, तो ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है इसका कारण आप ढूंढो अभी, क्योंकि आप जब योग में बैठे थे कोई आपको बैठक योग में क्या सामान लेना है क्या अभ्यास करना है उसका कोई लक्ष्य नहीं था आपका, बस सीधा योग का टाइम है इसलिए योग के लिए बैठे थे, सामने कौन बैठा है मैं कहां बैठी हूं ये भी कोई ये नहीं, तो जो आया वो चिंतन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सूक्ष्म ये करना है कि जब हम योग के लिए आ रहे पहले उसी समय आप सोचो कि जब अभी हम एक घंटा मैं योग करूंगी या करूंगा उसी समय मैं किस प्रकार का मन को कहां लेके जाऊंगे, बुद्धि को कहां लेके जाना है और क्या क्या सोचना है, कौन सी ड्रिल करना है, ये पहले फाइनल करना जरूरी। हमने कुछ भी संकल्प नहीं कुछ नहीं, जो भी बहनों ने कोर्स में बताया मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप बस आते करते रहते, लेकिन नहीं, हमें कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के क्या करना है बैठना, और लक्ष्य लेकर के बैठ करके फिर उसका क्या करना है चिंतन करना है, तब आपको अगर बुद्धि, और जब आप बुद्धि को लेके जाएंगे बुद्धि के सामने पहले क्या करो, जैसे हम योग कर रहे हैं अभी बाबा मेरा इंतजार कर रहा है, और जैसे आप योग करने के लिए आ रहे रास्ते में उसी समय से शुरू करो, अभी मैं बाबा के पास जाऊंगी एक घंटा, उसने मुझे अपॉइंटमेंट दिया है, वहां मेरा भाग्य वो मुझे इंतजार कर रहा है, अभी हम जाएंगे बाबा के कमरे में तो शरीर को रखेंगे और हम उसके पास जाएंगे, उनके गले मिलेंगे, उनको पूछेंगे, उनसे दृष्टि लेंगे। तो जैसे आप रास्ते में आते समय ये सोचते हुए आ रहे, हम तो कुछ नहीं सोचते हुए आते, कहां जा रहे, योग करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में देखेंगे कौन कौन आ रहा है, फिर क्या क्या हो रहा है, उधर कौन कौन बैठा है, फिर जब आएंगे योग में बैठेंगे शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, अरे अचानक याद है वो तो भाई तो वहां बैठा था, मुझे उनसे बात करनी थी, वो दीदी तो वहां, वो ये बात याद है। तो इसीलिए जब योग का अभ्यास करते हैं ये हमें क्या करना है, इसीलिए कहा कि बैठक योग के लिए आपको कर्म योग जरूरी है। अगर कर्म में आपका योग नहीं लगता है, कर्म में आप केवल चल रहे फिर रहे और उस समय बुद्धि बाबा के तरफ नहीं गई, उस समय आपको बैठक योग करना बहुत कठिन लगेगा, मुश्किल लगेगा, बुद्धि जाएगी वापिस आएगी ना, मन में वेरस संकल्प चलेंगे। इसीलिए जब हम योग का अभ्यास करते हैं उस समय बुद्धि को क्या करना है, और भी क्या करते हैं जान बराबर, जब आप योग में बैठेंगे तभी आपको क्या करेगी, इधर उधर लेके जाएगी बुद्धि को। इसलिए बाबा कहते ना ज्ञान सुनते समय तो ठीक है, लेकिन जब योग करते उस समय, जब योग कहेंगे तो बस डर जाएंगे, तुरंत क्या करेंगे, जैसे मुरली सुनने से पहले हमारा आधा घंटा का योग का क्लास भी होता है, मतलब योग करना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, अगर मुरली सुनना है उस समय तो आ जाएंगे, लेकिन योग के समय अभी समझो 10:30 बजे योग था, कितने जन आए थे, योग बोले तो उसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जब आप जो बातें सुनते हैं वो धारणा में तब आएगा जब योग करेंगे। इसीलिए योग में कभी भी हमें थकना नहीं, योग के सब्जेक्ट को क्या करना है, हम सोचते हैं कि योग तो बाद में करेंगे, पहले ज्ञान सुनकर लेंगे, जो यहां ही नहीं करे तो वहां क्या करेंगे हा? तो इसीलिए जब हम योग का अभ्यास करते हैं बुद्धि को अच्छी तरह समझना है। बुद्धि आपकी इधर उधर जाएंगी, लेकिन आपको उसको समझाना है। कैसे समझाना है? समझो कोई माता जी कई गली से जा रहे और माता के साथ कोई बच्चा है। जब उधर से सामने से कोई मिठाई वाला आता है, उस समय बच्चा क्या करेगा? मिठाई वालों को देख रोएगा, कहेगा मम्मी मेरे को मिठाई दे दो। तो मम्मी समझेगी नहीं बेटा नहीं खाना चाहिए, वो खाने से तुम बीमार पड़ेगा। उस समय वो माता जी क्या करेगी? किसको समझाएगी? वो बच्चे को समझाएगी। वो मिठाई वालों को कहेगी नहीं कल से तुम हमारे गली में नहीं आया करो, मेरा बच्चा रोता रहता है, बोलेगी क्या? हाँ, वो तो आएगा, उसका तो काम है, धंधा है। तो इसी तरह माया आएगी, विरध बातें लाएगी, लेकिन हमें क्या करना है? किसको समझाना है? बुद्धि को समझाना है। जब हम योग करने के लिए बैठे हैं और उस समय अगर बुद्धि इधर उधर गई, बुद्धि मेरी गई है इधर उधर, कैसा पता चलेगा? हाँ, मेरी बुद्धि, समझा आप योग में बैठे हैं, मैं अभी योग में हूं या नहीं हूं, कैसा पता चलेगा? हमारे संकल्प क्या चल रहे उसे आप बुद्धि की पकड़ कर सकते हैं। संकल्प जहां आए वहां मेरी बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि जैसे ना, बुद्धि एक कैमरा है और मन क्या है? टीवी है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र है वही चित्र किस में आता है? टीवी में आता है। इसी तरह बुद्धि रूपी कैमरा, बुद्धि जिन चीज को देखते है वही मन में क्या होते हैं? विचार चलते हैं। ये सिस्टम है। इसीलिए जब हम योग करने के लिए बैठते हैं तो पहले बुद्धि के क्या, बुद्धि को क्या लगाना है? वो अव्यक्त वतन में, अव्यक्त वतन की दुनिया देखने में लगा दो। वो अव्यक्त वतन जैसे चांदनी रात होती है, तो ऐसे कई चांद की रात के प्रकाश की तरह वो अव्यक्त वतन है, प्रकाशमय लाइट की वो दुनिया। तो जब योग में बैठते तो अव्यक्त दुनिया को देखना शुरू करो। बुद्धि वो अव्यक्त तो दुनिया को देख रहे और साथ में मन उसके बारे में सोच रहे, ये अव्यक्त वतन क्या है? यहाँ ब्रह्मा बाबा रहते हैं अव्यक्त वतन में, और मेरा फरिश्ता स्वरूप भी यहाँ है, मुझे भी संपूर्ण बनकर के इसी दुनिया में आना है, मेरा अपना संपूर्ण शरीर यहाँ है। तो जैसे आप उसके बारे में, जैसे उस और उसके अंदर अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा है, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा, और उनके अंदर शिव बाबा भी है, तो जैसे हम उसको देख रहे और उसके अंदर लगन में मगन हो रहे, तो जैसे वो दुनिया देख करके साथ में उसके बारे में सोचना भी है। केवल वो दुनिया देख करके बैठना नहीं, लेकिन साथ में ये दोनों क्रिया क्या करना है? साथ साथ में रखना है, बुद्धि वहां और साथ में मन भी वहां। तो ऐसा योग में जब बैठ करके आप कितना समय भी बैठेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी बुद्धि वहां, कैमरा हिले ना। लेकिन माया क्या करते है, कुछ समय के बाद धीरे से आपका कैमरा घुमा लेते, माना बुद्धि को घुमा करके कोई ना कोई बात याद दिलाते, अरे मैं तो योग में बैठा हूँ, मुझे तो ट्रांसपोर्ट जाना था, तुरंत ट्रांसपोर्ट का चित्र सामने आएगा और फिर सोचेंगे बहने भी इंतजार कर रहे थे, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, फिर कहेंगे कोई बात नहीं थोड़ा सा और योग करेंगे, फिर वो बुद्धि उधर लगाएंगे, फिर कुछ समय के बाद अरे सोचेंगे वो खाना भी लेना था, कई बातें। लेकिन उसी समय तुरंत बुद्धि को समझाओ, कोई बात नहीं अभी तो एक घंटा मैंने, मुझे आधा घंटा तो योग करना है ना, योग करो, नहीं तो योग से उठ करके वो काम तो करो, जाओ ना, वो काम कर रहे हैं ना योग कर रहे हैं, ये स्थिति होती है। इसीलिए जब योग करते हैं उस समय बुद्धि रूपी कैमरे के ऊपर ध्यान रखना है, बुद्धि को समझाना है। अगर आपकी बुद्धि समझ गई, इसीलिए जब हम योग करते हैं बुद्धि को समझाना है, और बुद्धि आकर आपकी समझ जाते कि सचमुच मैं ये गलत करती हूं, तो बुद्धि को कभी समझाओ, हे बुद्धि तुम मेरे इस राजाई की शान हो, मेरे शरीर में मेरी शान हो, तुम मुझे बहुत मदद करती हो, लेकिन कभी कभी तुम मेरी ऑर्डर नहीं मानते हो, क्योंकि जब तुम चली जाए तब मन चला जाता है, मन चला जाता है, मेरी पूरा कर्मेंद्रिय भी उधर चली जाते और कोई गलत काम करते, इसीलिए क्या करो, ये बुद्धि मेरी तुम्हारे लिए ऑर्डर है, तुम्हें कुछ भी व्यर्थ नहीं देखना है, अभी तुमको आधा घंटा एक घंटा या योग में बैठना है, और योग में क्या करना है, बाबा के पास जाकर के परमधाम में जाओ। तो ऐसा क्या करना है, बुद्धि को ऑर्डर देकर के आधा घंटा, और बुद्धि गई तो तुरंत समझाओ। बुद्धि, मैंने तो तुमको कहा था कि बाबा को देखो, तुम कहां गई? तो ये मेहनत करो थोड़ी सी। अगर ये मेहनत करेंगे धीरे धीरे आपकी बुद्धि समझ जाएगी, ये अभी मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं है, इसीलिए मैं क्यों इधर उधर जाऊं। तो ऐसे हमें अगर मेहनत करेंगे तो सचमुच आप योग में अच्छी तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जब ऐसा बैठक योग में आपकी बुद्धि, आधा घंटा बैठेंगे तो आधा घंटा उसी में खोई रहेंगी, व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगी, तब फिर आप जब योग करके उठेंगे तो जैसे आप अनुभव करेंगे तो आप चार्ज हो गए, आपके अंदर शक्ति आई है, आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज हो गई, ज्योति जली हुई है। और जब सारा दिन फिर कोई निंदा करे, कोई ग्लानी करे, अपमान करे, या जैसे आज बाबा ने कहा ना, आंखें चलायमान होती है, मुख क्या करता है, कंट्रोल में नहीं रहता। ये क्यों नहीं रहता? क्योंकि जिसने बाबा, माना बाप दादा को मिलने के बाद, भगवान को मिलने के बाद भी जिन्होंने आनंद नहीं लिया योग का, उसको खाने पीने की, किसी की सुंदरता को निहारने की कोई ना कोई विरद बाकी आदत लगेगी, उसकी कर्मेंद्रिया उधर जाएगी, मन बुद्धि भी जाएगा। तो इसीलिए योग का आनंद लो, यथार्थ योग करो, केवल ऐसा नहीं बस टाइम पास करने के लिए बैठे। और ऐसे योग में ही आपके विकर्म विनाश होते हैं, जो जन्म जन्मांतर के आपके जो विकर्म है, ऐसा जब आप योग करते एकाग्रता वाला, जहां बुद्धि है वहां मन भी है, और एक घंटा तक आप इस दुनिया से अब्सेंट है, उसी दुनिया में है, और जब फिर आप ऊपर से आएंगे आपको लगेगा तो आपके विकर्म विनाश हुए। और फिर सारा दिन भी आपको लगेगा भाई मैं ऊपर से आया हूं, फिर मुझे ऊपर ही जाना है, सोल कॉन्शियस अवस्था रहेगी, आत्मिक स्थिति। तो ऐसा हमें क्या करना है, बैठक योग करना है। और बैठ करके एक घंटा, कई सोचते ना एक घंटा तक बैठ करके बाबा से क्या क्या बातें करनी है, केवल देखते रहना है क्या? हमने एक बहुत अच्छा एक जो बोर्ड लिखते ना, वहां एक बार बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स लिखे थे, शिव बाबा को याद करना मतलब क्या करना। कई लोग सोचते ना बाबा को याद करना मतलब क्या करना, शिव बाबा को याद करना अर्थात उसको परम धाम में बुद्धि रूपी नेत्र से देखना, ये भी बाबा की याद है। अगर उसमें आप थक जाते हैं तो दूसरा क्या करो, शिव बाबा को याद करना अर्थात उसने सुनाए हुए ज्ञान को याद करना, तो भी क्या है, ये भी। इसलिए बाबा क्यों बोलते हैं बच्चे विचार सागर मंथन करो, इससे भी आपको व्यर्थ बातें नहीं आएंगी, लेकिन उससे भी आपको, ये भी योग है। आज बाबा ने क्या मुरली सुनाई, बाप दादा उसी दिन आए थे, क्या क्या सुनाया था, कैसी कैसी दृष्टि दी थी, क्या क्या कौन सा होमवर्क दिया था, अगर उन बातों को भी याद करेंगे तो भी योग है। शिव बाबा को याद करना अर्थात उसके गुणों को याद करना और उसमें स्थित हो जाना, एक एक गुण को उसको याद करो। शिव बाबा ने जैसे परमधाम में जाओ, बुद्धि रूपी नेत्र वहां है और उसको देख रहे, वो शांति का सागर है, उससे शांति की किरणें आ रहे और मैं भी उसका अनुभव कर रहा, वो आनंद का सागर है, मैं भी आनंद स्वरूप हूं, वो शक्ति का सागर है और उससे शक्ति निकल करके, तो एक एक गुण लेकर के स्वरूप का अनुभव करो। अगर उसमें बोर हो जाते तो फिर आगे का पॉइंट, उसने जो उपकार किया है उसको याद करना, ये भी शिव बाबा की याद करना, वाह बाबा आपने तो मुझे कमाल कर दिया, आपने तो मुझे कहां विकारों के गटर से निकाला और मुझे गले लगा दिया, मेरे दुखों से आंसू पोंछे, और माली बन करके अभी भी मेरे जीवन रूपी बगिया को ज्ञान और योग से सींच रहे हूं, टीचर बनकर के रोज आकर के पढ़ा रहे हूं, भोलानाथ शिव भोलानाथ बनकर के मुझे अनेक ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हूं। तो एक एक क्या करो, जो उसने उपकार किया उसको याद करते रहो, ये भी बाबा की याद है। कहां हम भटक रहे थे, मुझे माया ने क्या किया था, धोखा दिया था। ऐसे समय पर आप दोस्त बन करके आकर के मुझे आपने क्या किया, धोखे से बचाया। बाप बन करके मुझे आप वर्षे के मालिक बना रहे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कुछ चिंतन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो उसमें फिर व्यर्थ के तरफ चले जाते। इसीलिए बुद्धि को क्या करो, बिजी रखो। बुद्धि देख रहे और मन भी बिजी, मन से भी क्या करना है, उसका है चिंतन करना है। तो ऐसे हमें क्या करना है, बैठक योग में अभ्यास करना। अगर वो नहीं तो संगम युग का महत्व है, उसको याद करो। ये भी शिव बाबा की याद है, उसके अपने घर में उसको देखना, ये भी बाबा की याद है। तो ऐसे हमें क्या करना है, याद करना है। और याद में बैठ करके जैसे कोई ना कोई सोमानुक के भी आप अभ्यास कर सकते। केवल हमें बैठ करके कई क्या करेंगे, कॉस्केट लगा हुआ है या चित्र लगा हुआ है, बाबा का फोटो है, बस उसको देखते रहेंगे, उसकी आंखों में देखते रहेंगे। वो फोटो को देखना, ये भी जैसे केवल मन बुद्धि, केवल आंखें आपकी यहां है और आपको ये नहीं कि मन बुद्धि ऊपर नहीं गई, तो भी आपको उस फोटो से कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको फोटो को देखते हुए भी मन बुद्धि कहां जाए, बाबा के पास जाए। अगर मन बुद्धि ऊपर जाएगी तो वो फोटो ही आपको लगेगा जैसे चैतन्य है, चैतन्य बाबा जैसे आपको देख रहा है, वो अनुभव होगा। जब आपकी मन बुद्धि ऊपर जाएगी तो जैसे अगर समझो आपके किसी के पास 10 रुपए हैं और उस व्यक्ति का फोटो खींच करके रखा हुआ है और वो फोटो को कहेंगे 10 रुपए दे दो मेरे, देगा क्यों, वो फोटो थोड़ी 10 रुपए देगा। अगर 10 रुपए चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा, जो वो व्यक्ति है वहां जाना पड़ेगा। इसी तरह बाबा का चित्र देखते हुए भी हमारी बुद्धि बाबा के पास जाए। इसीलिए देखो बाबा यहां आने के बावजूद भी बाबा क्या करता है, इसी दिन का ना परम धाम में स्थित होकर के बाबा यहां आने के बावजूद भी बाबा क्या बोलता है, मुझे अगर केवल चित्र को देखते रहेंगे तो आपकी बुद्धि उपराम नहीं होंगी। परम धाम में ही बाबा याद करने के लिए क्यों बोलता है, जैसे आज भी कहा ना घर जाना है वापिस, तब आप उपराम होंगे। अगर बाबा को यहां ही याद करेंगे तो आपको ऊपर जाना है, आप भूल जाएंगे ना? तो इसीलिए हमें बाबा को कहां याद करना है, परम धाम में याद करना है। और ऐसा बैठ करके हमें चिंतन करना है और बाबा को देखते हुए आंखें खोल करके बैठना है। और साथ में क्या बातें करनी है, कई सोचते क्या बातें करनी होती है एक घंटा तक। जैसा कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर कह रहे कि डॉक्टर उनको पूछ रहे कि आपको क्या हुआ, तो पेशेंट थोड़ी सोचता है कि मैं अभी इनको क्या बोलूं, क्या बोलता है वो, जो भी उसको समस्या है प्रॉब्लम है वो क्या करता है, उसको डॉक्टर को सुनाता है। इसी तरह आपके जीवन में कोई समस्या प्रॉब्लम है वो बाबा को सुनाओ, ये भी क्या है, ये भी योग है। अगर कोई समस्या नहीं तो भी चुप नहीं बैठना है। अगर वो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं कुछ नहीं, डॉक्टर आया सामने और डॉक्टर पूछ रहे कुछ, पेशेंट कुछ भी नहीं बोल रहा, ऐसा होता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी मुझे दवाई दी, मैं ठीक हूं, मुझे कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी मुझे दवाई दी। इसी तरह जब बाबा के सामने बैठे हैं तो बाबा कहो कि बाबा आपने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया, मुझे क्या से क्या बना दिया। अगर कोई समस्या है तो सुनाओ, समस्या नहीं तो भी चुप नहीं बैठना, जो भी उसने उपकार किया है उसको याद करो। कई सोचते बाबा तो भगवान है ना, वो डॉक्टर तो समझो पता नहीं चलता उसको, लेकिन बाबा तो भगवान है, उसको क्या। जैसे कल परसों एक भाई ने प्रश्न पूछा, जैसे उसी दिन बाबा आया था तो रमेश भाई ने, जो एक दूसरा भाई था जो मीडिया वाला, तो उन्होंने कुछ बाबा के लिए कुछ बोल रहे थे, तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे सामने आओ, सुनाई नहीं देता। तो उस समय उसके बाद कल परसों एक भाई ने प्रश्न पूछा, बाबा तो भगवान है यहाँ डायमंड हाल का ही सुनाई नहीं पड़ता तो हमारा यहाँ का कहाँ सुनाई पड़ता हूँ। देखो कैसे कैसे व्यक्ति सोचता है, वास्तव में ये साकार शरीर लिया था, इसलिए साकार तो ऊपर, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना यहाँ की सब बातें आपको दिखाई भी पड़ेगी, सब सुनाई भी पड़ेगा सब कुछ। इसलिए तो कई सोचते हैं ना, बाबा तो भगवान है ना, बाबा को क्या सुनाना पड़ता है। नहीं, बाबा को जैसे अगर डॉक्टर पूछ रहे पेशेंट को, अच्छा आपको क्या हुआ, तो पेशेंट बोलता है कि आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप डॉक्टर किसके लिए बने फिर, हाँ बोलता है क्या, उसको सुनाना पड़ता है। इसी तरह आपके जीवन में जो समस्या है वो बाबा को क्या करना है, सुनाना है। केवल योग में बैठ करके चुप नहीं बैठना है। तो इसी तरह बाबा को, बाबा से क्या बातें करनी है, तो इसका कोई समस्या प्रश्न नहीं। आपके जीवन में जो बाबा ने उपकार किया है उसको याद करते रहो। इसी तरह बाबा से योग करते समय रोरवन करने, और उसके लिए कोई ना कोई एक घंटा आप खोए रहे उसके लिए कोई ना कोई सामान लो। अभी देखो इस सीजन की जो मुरली चली थी, अच्छा इसी को ही अगर आप योग करने के लिए यूज करेंगे तो बहुत अच्छा। उस मुरली को क्या करो, डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करो, जैसे बाबा ने इस मुरली में योग करने के लिए बहुत अच्छी एक बात बताई थी, कौन सी, ये बोला हमें योग मतलब करते समय बैठना नहीं, लेकिन बहुत अच्छी दो बातें बाबा ने बताई थी योग के लिए इसी मुरली में। एक तो मैं लाइट हाउस हूं, माइट हाउस हूं, लाइट हाउस और माइट हाउस आत्मा परम धाम में स्थित होकर के सर्व शक्तिवान से शक्तियां लेकर के सारे विश्व की आत्मा को सकाश दे रहे हूं, बस ये भी योग की बात थी। तो जब आप योग में बैठते हैं तो उस बात को याद करो और उस अनुसार क्या करो, परम धाम में स्थित होकर के शक्ति दो। दूसरी और एक बात बताई थी, आप तने हो, जड़ और तने हो, तो इसी तरह मैं तपस्वी और मेरे सिर के ऊपर पूरा मनुष्य का सृष्टि रूपी झाड़ खड़ा है और मैं जड़ के नीचे हूं और सर्व शक्तिवान से शक्ति लेकर के मैं सभी मनुष्य भी पत्तों को और धर्म रूपी डालियों को क्या कर रहा हूं, वो सर्व शक्तियां लेकर के दे रहा हूं। इस विजन को सामने लाओ तो आप योग में बैठेंगे वही करो तो आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कितना बीत गया। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, कोई विजन नहीं, कुछ नहीं, बैठ करके योग करते हैं और योग करेंगे, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर एक झुटका लगा फिर देंगे और 15 मिनट बाकी, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर एक झुटका लगे, ऐसा वाला योग करते रहे, फिर योग टाइम पूरा हो गया, फिर हाँ योग किया किया है? तो ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, रियली वाला योग करे। उस योग में आप कहां थे, मन कहां था, बुद्धि कहां था, वो चेक करे। लक्ष्य लेकर के बैठे उसके लिए कई प्रकार के सामान आए, तो सोमानों के अभ्यास कैसे करें, उसका एक एग्जाम्पल आपको सुनाते। योग में जब बैठते हैं तो बाबा ने तो सोमान की कितनी सारी लिस्ट बताई है, कितने सारे ढेर सारे सोमान है, तो उस सोमानों के योग में अनुभव कैसे करें। समझे, एक सोमान है मैं शिव शक्ति हूं, यह सोमान है और उसको आपको योग में अनुभव करना है तो कैसे करें। तो जैसे जब भी आप योग करने के लिए बैठते हैं रात, कोई भी सोमानों की जब शुरुआत करते हैं तो रात को क्या करो, सोने के लिए अव्यक्त वतन में बाबा के पास जाऊं और सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा, फिर बाबा याद आएगा, फिर बाबा को गुड मॉर्निंग करके। तो जैसे आपका जो सोमान लिया है आपने, जैसे मैं शिव शक्ति हूं, तो जैसे बाबा आपको कह रहे कि बच्ची तुम साधारण नारी नहीं हो, तुम एक शिव शक्ति हो, तो आप जैसे बाबा कह रहे हैं और उस बातों का आप अनुभव करें, मैं एक शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, स्वयं सर्व शक्तिवान से मैं शक्तियां ले रही हूं, बाप दादा मुझे माया से बचने के लिए अनेक अस्त्र शस्त्र दे रहे, ड्रामा की ढाल दे रहे, ज्ञान की तलवार दे रहे, विजय का तिलक लगा रहे, सर्व शक्तियां भर रहे, वरदान दे रहे, और साथ में मैं शिव शक्ति अनेक अस्त्र शस्त्र से सज धज करके आप अनुभव कर रहे हैं अभी। जैसे मेरे शरीर के ऊपर सोने का मुकुट है, हाथ में त्रिशूल है, अनेक अस्त्र शस्त्र है और बाबा मुझे अपने हस्तों से जैसे वरदान दे रहे और बाबा दृष्टि के द्वारा मुझे पावरफुल शक्तिशाली बना रहे और बाबा कह रहे कि हमारा अभी जन्म जिसके लिए हुआ है वही कर्तव्य अभी करो, जाओ मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ है, मैं स्वयं सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ में हूँ, तुम शिवमय शक्ति हो। ऐसा आप अनुभव करें कि मैं एक शिवमय शक्ति हूँ और मैं अभी शिव शक्ति क्या कर रही, बाबा से सर्व शक्तियां लेकर के नीचे सृष्टि पर जा रहे और सृष्टि पर जा करके मंदिर में पहुंचती हूँ और मंदिर में पहुंच करके जिस मंदिर में मेरे भगत लोग पुकार रहे शक्तियां मांग रहे उसी मंदिर में मैं जाती हूँ और मेरा एक जड़ मूर्ति रखी है वो लोग भक्तों ने और उसी जड़ मूर्ति को मांग रहे, मैं पीछे के दरवाजे से जाकर के उस मूर्ति के ऊपर हाथ रखती हूँ और उन सब भक्तों को वरदान दे रहे। सर्व शक्तिवान से प्राप्त हुई शक्तियां मस्तक के द्वारा नयनों के द्वारा दे रहे और उन सबको कह रहे कि हे भक्त लोग, हे वत्स लोग, जिसको तुम पुकार रहे वो ये सृष्टि पर आ चुका है और जिस देवी की तुम पूजा कर रहे, मैं देवी भी अभी तपस्या कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में और तुम उस सर्वशक्तिवान को मिलने के लिए, भगवान को मिलने के लिए तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। तो इस तरह से रहम से उन आत्माओं को क्या कर रहे, आप पुकार रहे, उनको वरदान दे रहे, शक्तियां दे रहे। इसी तरह एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहे, तीसरे मंदिर में जा रहे, आप अपने गांव के ऊपर स्थित होकर के सभी गांव वालों को कह रहे हे सभी नेपाल निवासी उठो जागो, ये अभी सोने का वक्त नहीं, स्वयं सर्वशक्तिवान पशुपति नाथ वो सभी पशु समान बने हुए आप सभी को पावन बनाने के लिए अवतरित हो चुका है और तुम उसे पहचानने के लिए थेमेल में वहां आश्रम बना हुआ है, वहां आओ। तो इसी तरह क्या करें, तो इसी तरह पूरा नेपाल में काठमांडू में कभी, तो आप योग में जब बैठेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना घंटा, हम कोई ऐसे विजन नहीं कुछ नहीं मनसा सेवा नहीं, बैठ करके क्या करते मैं आत्मा शांत रूप फिर एकजुट कर फिर कहीं बेरत की तरफ जाते। तो इसीलिए हमें योग में विजन लेना क्या करना है, ये भी सेवा है जिसको बाबा कहते हैं मनसा सेवा। तो हमें मनसा सेवा भी क्या करना है, साथ साथ में करनी है। तो ऐसा जब हम अभ्यास और केवल लेकिन यही सोमान फिर कर्मों में भी यूज कर सकते हैं। तो बैठक योग में हमें ऐसे सोमानों के अभ्यास करना है, ऐसे विजनों का अभ्यास करना है। तो कभी ये विजन लो, कभी ये समझो कि मैं एक सितारा हूं, वो परमधाम परमात्म तारामंडल से निकल करके मैं सितारा ऊपर से आता हूं, एक ब्रुकुटी में बैठता हूं, चमक चमचम करके सारे संसार में क्या कर रहा हूं, शक्ति दे रहा हूं। कभी मैं आकाश में स्थित होकर के शक्ति देता हूं, कभी मनुष्य शरीर को धारण करके उसमें ब्रुकुटी में बैठ करके सबको प्रकाश देता हूं और मैं प्रकाश इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर उस ज्ञान सूरज की किरणें फैल रही। तो ऐसे हमें क्या करना है, विजन लेकर के अभ्यास करना है बैठक योग में, तब हमारा बैठक योग बहुत अच्छा होगा। साथ साथ हम बैठ करके योग डेली समय निकाल करके करें। तो समय कैसे निकाले बैठने के लिए, देखो बैठक योग हमारा करीबन 3-4 घंटा होना जरूरी है। तो एक तो सवेरे अमृत वेला हमें बैठ करके योग करना है क्योंकि बैठ करके योग करने से क्या होगा, मन और बुद्धि सहज एकाग्र कर सकते हैं, पावरफुल योग कर सकते हैं। ऐसे नहीं बैठ करके योग का टाइम है कई सोचते हैं नहीं बाबा ने थोड़ी कहा कि हठ योगी बनो, नहीं, जो बैठने के लिए समय निश्चय किए उसी समय बैठ करके ही करना है तब आपको योग का बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो एक तो अमृत वेला 3:30 बजे उठो, 4 बजे उठो, 3:30 से 5 बजे तक कितना घंटा हुआ, डेढ़ घंटा हुआ, उसके बाद क्लास से पहले भी हमें क्या करना है, जो भी नियम है, चाहे आप कोई भी क्लासेस सुनते हैं, क्लास से पहले आधा घंटा योग अवश्य है। अगर योग नहीं करेंगे तो मुरली आपको ध्यान में नहीं रहेगी। जैसे गर्म तवे पर पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसी तरह गर्म दिमाग के ऊपर ज्ञान के अमृत डालेंगे तो क्या हो जाएगा, शाम तक उड़ जाएगा। इसीलिए आधा घंटा हमें क्लास से पहले योग अवश्य है। तो हमें क्लास से पहले आधा घंटा योग करना है, उसके बाद फिर शाम को भी सोने से पहले हमें क्या करना है, योग करके सोना है। ऐसा नहीं बिस्तर डाल दिया, गुड नाइट करके बाबा को कि बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में बहुत मेहमान आए थे, प्लीज मुझे 4 बजे जरूर जगा देना, ऐसे कमजोर विचार करके सोएंगे। सवेरे उठेंगे, उठते ही कहेंगे अभी तो घड़ी में 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा और 5 मिनट सो जाएंगे, क्योंकि कल तो हम दिन में रेस्ट नहीं किया था, थक गए थे, ऐसे करके सो जाएंगे। 5 मिनट के लिए जाएंगे, 5 बजे का पता नहीं चलेगा। इसीलिए सोने से पहले अच्छी अवस्था में सोना है, योग करके सोना है, तब आपकी अमृत वेला अच्छी होगी। तो क्लास सोने से पहले योग ये बहुत जरूरी है। जो जितना सोने के पहले योग करके सोता है उसके लिए अमृत वेला बहुत अच्छी सफल कर सकता है। तो कितना घंटा हुआ, डेढ़ प्लस क्लास का पहले आधा घंटा, 2 घंटा हुआ, उसके बाद फिर आधा घंटा ये सोने के पहले वाला, 2.5 घंटा हुआ, उसके बाद फिर शाम को भी 6:30 से 7:30, ये भी योग का अच्छा टाइम होता है। अगर आप अपने घरों में फ्री है तो भी सेंटर पर आओ, अगर नहीं फ्री है तो भी थोड़ा सा समय निकाल करके घर में योग अवश्य बैठ करके योग करना है। तो कितना घंटा हुआ, समझो आधा घंटा भी पकड़ो तो 3 घंटा हुआ, और उसके बाद सारा दिन के ट्रैफिक कंट्रोल थोड़ा थोड़ा, तो कितना सहज 2-3 घंटा आपका योग हो जाएगा। तो बैठक योग करना हमें जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे 8 घंटे का योग का चार्ट बनाओ। 8 घंटा मतलब कोई बैठ करके बाबा ने नहीं कहा है, 4 घंटा बैठ करके या 3 घंटा बैठ करके, और जब बैठ करके 3 घंटा होगा उसके बाद फिर कर्म में आपका ऑटोमेटिकली 3-4 घंटा लग ही जाएगा, तो टोटल आपका 8 घंटे का चार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमें योग के लिए समय निकालना है। कई योग करने का इंटरेस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका योग लगता ही नहीं, इसलिए वो छोड़ देते, छोड़ दो योग, बस ज्ञान ठीक है अपना। तो योग नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, कैसे अतीन्द्र सुख मिलेगा। इसीलिए योग हमें क्या करना है, अवश्य करना है। अगर समझो आप घर में बैठे योग लगा रहे और योग लगाते लगाते बहुत कोई व्यर्थ संकल्प चल रहे, तो कम से कम आप क्या करो, उस व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने के लिए आप मधुवन आ जाओ। तो कैसे आ जाओ, जब आप समझो किसी ने आपको कुछ निंदा की या कोई विघ्न डाला है, और उस विघ्नों के या किसी ने डांटा है उसके संकल्प चल रहे या कोई व्यर्थ संकल्प चल रहे, तो आपको उससे मुक्त होने के लिए क्या करो, परमधाम में तो नहीं जा रहे आप, बार बार वही बातें याद आ रहे, तो आप मधुवन में आ जाओ। तो आप याद करो जब आप मधुवन में गए थे तो उसी दिन बाबा आए थे, उसी दिन वो कितना अच्छा सीन था, हम डायमंड हॉल में बैठे थे, फिर बाबा के पहला आह्वान किया, आह्वान करने के बाद फिर बाबा धीरे धीरे बाबा का अवतरण हो गया, फिर बाबा ने वो दृष्टि दी थी, वो दृष्टि कितनी पावरफुल थी, उस दृष्टि को याद करो। और वो जैसे मैं उस सभा में बैठे वो दृष्टि दे रहे, उसके बाद फिर बाबा ने मुरली चलाई, वो मुरली में भी बाबा ने क्या क्या बोला, और उसके बाद फिर बाबा ने लास्ट में उठ करके भी क्या क्या सभी तरफ जैसे आशीर्वाद के हाथ घुमाए, और उस समय चारों तरफ शक्तियां फैला दी, और मुझे कितना अच्छा अनुभव हुआ। फिर बाबा चला गया, और उसके बाद जैसे हम मधुवन में गए थे, फिर उसके बाद ऊपर शांति स्तंभ पर गए थे, फिर उसके बाद ज्ञान सरोवर में गए थे, उस दृश्य को याद करो, उसके बाद फिर नीचे आओ, फिर जैसे ओम शांति पहाड़ी पर लिखा हुआ है, उस पहाड़ी के ओम शांति वहां लिखा है, हम वहां पहुंचे मन बुद्धि से, और वहां से हम ऊपर परमधाम के तरफ देख रहे, और परमधाम को देखते हुए वहां से मैं उड़ते हुए क्या कर रहे हैं, ऊपर अव्यक्त वतन के तरफ जा रहे। तो अव्यक्त वतन में जाते ही जैसे ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए, मुझे क्या क्या गले लगाया, फिर बिठाया, तो बस आप वो बात आप भूल जाएंगे, जो आपको घर किसने घर में किसने बोला था क्या किया था वो भूल जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बातों को भूलने के लिए ये कुछ युक्ति अपनाना है। तो ऐसे हमें योग का अभ्यास करना है। तो बाकी कर्म में योग कैसे करें, ये तो आपको बैठक योग का सुनाया, साथ में हमें कर्म में बाबा को याद कैसे करें ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपका कर्म में योग नहीं है, जैसे कहा ना कर्म योग और बैठक योग इसका बहुत गहरा संबंध है, और महान भाग्यशाली वो है जो कर्म करते बाबा को याद करते। जैसे एक बार नारद विष्णु जी को पूछता है, इस संसार में सबसे ज्यादा याद आपको कौन करता है? तो नारद जी बोलता है, एक खेती वाला मुझे सबसे ज्यादा याद करता है। बोला कमाल है, वंडरफुल है, मैं तो सदा ही आपको नारायण 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 सदा करता हूं। तो उसको नारद को लगा कि मेरा नाम बताएगा, लेकिन विष्णु जी ने कहा कि मुझे वो खेती वाला ज्यादा याद करता है। उसको तो बहुत वंडरफुल लगा, तो कहा कि मैं आपको बताऊंगा इसका। तो एक बार क्या किया, उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको कहा कि आप क्या करो, वो खेती वाला कौन है उसका नाम बताए, उस गांव में है वहां जाकर के देखना। तो नारद गया, अपना वेश बदल करके गया, पेड़ के नीचे बैठा, और वो खेती वाला आया। पहले शुरू खेती में हल चलाने से पहले थोड़ा सा बैठ करके भगवान का ध्यान किया। फिर कहा, ये भगवान ये सब आपका है, आपने मुझे दिया है, मैं ये कर्म कर रहा हूं। फिर उसके बाद फिर हल चलाया, फिर बीच में एक बार खड़ा बैठ करके क्या किया, थोड़ा ध्यान किया, और उसके बाद फिर हल चलाया, फिर लास्ट में जाते समय ध्यान किया और चला गया अपने घर में। तो नारद आया, कहा कि कमाल है, उसने तो तीन बार ही आपको याद किया, और मैं तो सदा नारायण 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 करता हूं, तो आपने कहा वो याद करता है। तो कहा कि मैं आपको समय आएगा तो बताऊंगा। तो एक बार वो परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उनको बुलाया और एक कटोरा भर दिया, कटोरा में तेल दिया और तेल में एक दीपक जलाया और कहा कि देखो ये दीपक है, उसको लेके जाना। नारद को कहा, लेकिन ये दीपक बिल्कुल बुझना नहीं चाहिए और उसका तेल भी गिरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना एक बूंद भी, तो आप पूरा संसार सृष्टि को चक्कर लगा क्या हो। तो उसने नारद जी ने क्या किया, वो कटोरा लिया और उसको यही याद था कि भैया गिरना नहीं चाहिए तेल और दीपक बुझना नहीं चाहिए, तो वही सोचते जाता है कि तेल गिरना नहीं चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए, तेल गिरना नहीं चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। वही याद करते करते चक्कर लगा कि आया, बिल्कुल तेल नहीं गिराया, दीपक बुझाया नहीं। कहा कि देखो मैं आ गया। बोला दीपक बुझा? नहीं नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बुझा। तेल गिरा? बिल्कुल नहीं गिरा, मुझे यही याद था बिल्कुल। तो कहा कि अच्छा आप ये बताओ, तो जब आप चक्कर लगाने के लिए गए थे मुझे कितना याद बार याद किया? अरे बोला ये तो मैं भूल गया, तो मुझे तो यही याद था कि दीपक बुझना नहीं चाहिए, तेल गिरना नहीं चाहिए। उस समय कहा कि आपने नारायण नारायण कितना बोला? तो बोला ये तो मैं भूल गया। तो कहा देखो, जो मैं आपको जवाबदारी दी वो करते समय आपने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। वो खेती वाला, उसको जो मैंने जवाबदारी दिया वो जवाबदारी करते हुए भी तीन बार मुझे याद किया, तो आपसे ज्यादा कौन याद, सबसे ज्यादा कौन याद किया? उसने किया। तो इसी तरह जो हमें कर्म दिए वो कर्म करते बाबा को याद करना वो सर्वश्रेष्ठ है, कर्म को छोड़ करके बाबा को याद करना वो याद नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कर्म में क्या करो, मुझे याद करो। इसलिए लेकिन कर्म में बाबा की याद हमारी क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें एक समझो आप मधुबन में आए हैं, यहां मधुबन में आपको बाबा ये चांसेस क्यों देते हैं, आपको जवाबदारी क्यों देते हैं कि बाबा की कर्म में याद करने के लिए आप सीखे। इसके लिए आपको किसी को झाड़ू लगाने की, किसी को पोछा लगाने की, किसी को क्या सब्जी काटने की, रोटी बेलने की, अलग अलग सेवाएं मिलती है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहां आप ये सीखे कि कर्म में कैसे याद किया, कर्म कैसा भी है लेकिन आपको कितना अच्छा आनंद आता है। क्यों आता है आनंद? क्योंकि आपका भाव क्या है, यहां भी ये बाबा की सेवा है, मेरा भाग्य बन रहा है। वहां सेवा कौन सी काम करे वो नहीं देखेंगे, ये नहीं सोचे कि मैं तो इंजीनियर हूं और मैं झाड़ू लगा रहा हूं, नहीं, बाबा की सेवा मेरा भाग्य बना रहे, अगर यहां का कचरा उठाऊंगा तो मेरा भाग्य बन जाएगा, ये है ना। तो इसी तरह आप आपके घर में रहते उस समय कर्म में बाबा की याद क्यों नहीं रहते, क्योंकि उसी समय सोचते ये जो घर का काम करिए थोड़ी सेवा थोड़ी है, सेवा सेंटर पर की जाती है, घरों की सेवा नहीं होती, ये तो मेरा अपना काम है समझ करके करते, और यही कारण है कर्म में योग न रहने का। इसीलिए कोई भी सेवा करते हैं उसको सेवा भाव से करो। ब्राह्मण बने तो आपका हर कर्म क्या है, सेवा है। चाहे घर में खाना पका रहे हैं, चाहे सेंटर पर कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं, आपकी सेवा ही चल रही है। इसीलिए हमें कर्म में क्या करना है, योग युक्त होकर के कर्म करना है। ये बाबा की सेवा है, बाबा ने दिया हुआ है। आप अपने मर्जी से वहां गए हैं, घर में किसने भेजा है, वहां बाबा ने भेजा है ना। तो इसीलिए ये समझ करके आप जब कर्म करेंगे उसी समय आपको बाबा की याद सहज रहेगी, और जब आपको उस कर्मों में बाबा की याद रहेगी, जैसे आप रोटी भी पका रहे, ये नहीं सोचो कि मैं अपने मेरे बच्चे के लिए रोटी पका रहे, नहीं, बाबा ने मुझे मधुबन से भेजा है, यहाँ जो हमारे घर में जो लोग रहते हैं बाबा के बच्चे हैं उनके लिए मैं खाना बना रहे, बीच में किसको लेके आओ, बाबा को लेके आओ। हम क्या सोचते हैं ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे अभी तक स्कूल में नहीं आए, बाबा को कि बाबा आपका बच्चा वो स्कूल में से आया नहीं अभी तक, क्या बात है, तो बाबा याद आएगा। इसी तरह हमें हर कर्म को क्या समझना है, सेवा समझ करके क्या करना है, योग करना है। तो सेवा समझ करके अगर करेंगे तब फिर उस कर्मों में योग की स्थिति रहेगी, और जितना आप कर्म में, चाहे चलते समय, चाहे खाना बनाते समय, चाहे जो भी कर्म करते समय, खेती का काम करते समय, सेवा समझ करके करेंगे तो बुद्धि आपकी बाबा के पास रहेगी। आप रास्ते में चल रहे, चलते समय अगर योग में नहीं है, ऐसे ही चल रहे बस सिर्फ, तो उसी समय क्या होगा, अगर योग में नहीं है तो आपकी बुद्धि क्या करते, बुद्धि जैसे कहा ना कैमरा है, और वो कैमरा क्या करते हैं, जहां बुद्धि है जो जो देखते हैं बुद्धि रूपी नेत्र उसके फोटो खींचती है। समझो किसी व्यक्ति को देख रहे उसका फोटो हो रहा है, और ये सब चीजें देखने के बाद जब आप योग में बैठेंगे सारा दिन बुद्धि ने जो देखा वही आपको योग में याद आता है। इसीलिए बाबा क्यों बोलते हैं बच्चे कर्म करते समय क्या करो, मुझे याद करो, क्योंकि कर्म कर, समझो आप रास्ते से आ रहे और आते समय बाबा को देखते हुए याद आ रहे, बाबा के याद में आ रहे, मतलब बुद्धि आपकी परमधाम में, तो उस समय आपकी आंखें खुली है लेकिन आपका ध्यान वहां होने के कारण आपको कौन आया कौन गया उसका कोई लेना देना ही नहीं। और जब योग में बैठेंगे तो वो लोग तो आपको याद भी नहीं आएंगे, इसीलिए कर्म में योग करना जरूरी है। समझो यहां से लेकर के आपको अभी किचन तक जाना है और जा रहे, या समझो सेंटर से लेकर के घर तक जा रहे, और जाते समय ये सोचते जा रहे कि अभी बाबा आया था, उसने कितना अच्छा महावाक्य उच्चारण करके गया, बाबा ऊपर से मुझे देख रहा होगा, मैं नीचे अभी जा रहा हूं, तो जैसे बुद्धि आपकी वहां देखते हुए जा रहे हैं तो उस रास्ते से आपने क्या क्या देखा वो कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे वो देखो जो दिखाई नहीं पड़ता उसको देखो, तब आपको सामने का दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऐसा हमें कर्म में क्या करना है, योग करने की प्रैक्टिस करनी, कर्म में बाबा को सदा साथ में रखना है, तब फिर आपका जब बैठ करके योग करेंगे वो योग आपको बहुत अच्छा आप योग कर सकते। तो कर्म में भी योग करना है और साथ में सारा दिन बाबा क्यों बोलते हैं बच्चे, देखा जाए तो हमारा कर्म में बहुत कम योग रहता है, कर्म में गए तो कर्म में कौन से, इसीलिए बाबा ने इसी मुरली में भी कहा ना तीनों सेवा साथ साथ हो। चलो जैसे योग में कैसे बैठना है, योग में क्या सोचना है, मन कहाँ लगाना है, बुद्धि कहाँ लगाना है, योग में क्या बातें करनी है, योग में सोमानों के अभ्यास कैसे करने हैं, कर्म में योग कैसे करना है, ये सब बातें हमें बहुत जरूरी है इसकी। और ये बातें जब आपको अच्छी तरह है तब आपका है यथार्थ योग, और तब आपके विकर्म जो विनाश होने की जो प्रक्रिया, विकर्म भी विनाश होंगे और साथ में आपको बहुत अच्छा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुए होंगे, और साथ में योग के लिए सारा दिन के लिए जैसे कहना कोई ना कोई लक्ष्य लेना है। और योग बोर क्यों लगता है, कई कई उनको योग बोर लगता है या योग में सोचते हैं कि क्या बातें करनी है। योग में रोज वैरायटी, अलग अलग सामान लो वैरायटी। अगर रोज आपको आलू की सब्जी खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोज आलू की सब्जी खिलाएंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन वही आलू में कभी पत्ता गोभी डाला, कभी फूल गोभी डाला, कभी गाजर डाला, कभी सेम फली डाला, तो क्या हो जाएगा, बोर नहीं लगेंगे। इसी तरह पुरुषार्थ भी में हमें क्या करना है, रोज नए नए ढंग से क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा क्यों नई नई सुनाता है, नई नई बातें सुनाता है, क्यों, नवीनता। तो ऐसे हमें क्या करना है, रोज नए नए ढंग से आज ये अनुभव किया, फिर कल कुछ और अनुभव करना है, फिर परसों कुछ और अनुभव करना है। तो आपको ऐसे क्या होगा, योग में इंटरेस्ट आएगा। अगर वही वही बातें जब हम करते हैं तो भी कई भाई बहनों के क्या होता है, योग बोर लगता है। जैसे सोमान आई, उसको नए नए ढंग से अभ्यास करें, तो नवीनता कैसे लाएं, नवीनता लाने के लिए क्या करें। जब जैसे कई प्रकार के सोमान, जैसे कहा ना, एक तो आपको मैं शिव शक्ति बताया, तो केवल मैं शिव शक्ति हूं यही नहीं, लेकिन मैं कभी समझो कि आज मैं दुर्गा बन करके नीचे सृष्टि पर आ रही हूं और सभी के आज दुर्गुणों को हरने के लिए आई हूं, कभी मैं शीतला बन करके आई हूं, आज मैं सबको शीतलता की किरणें फैलाने के लिए आई हूं, कभी मैं वैष्णवी बन करके आज सभी के विषय विकारों को मिटाने के लिए आई हूं। तो इसी तरह वैरायटी, या कभी जैसे सप्ताह में 7 दिन है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो जब आप योग का अभ्यास करते हैं उस समय समझो कि आज मंगलवार है, मैं तो परमधाम से सीधा क्या करें, बाबा से शक्ति लेकर के मंगल ग्रह पर जा करके क्या करें, वहां उस मंगल ग्रह को पावन बनाने का पुरुषार्थ करें। मंगल ग्रह पर वहां कोई नहीं है, वहां साइंस भी मुश्किल से पहुंच जाता है, लेकिन मैं मुझे बाबा ने क्या किया है, परमधाम में से शक्ति भर करके फरिश्ता बना करके उस मंगल ग्रह पर भेजा है और मैं वहां वाइब्रेशन फैला रही हूं। तो सारा जब भी एक घंटा योग करते आप समझो कि यहाँ कोई आवाज नहीं, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई कुछ है, तो मैं बाबा से जो भी शक्तियां मिली उस मंगल ग्रह पर क्या करें, फैला रहे। तो अगर कहते हैं ना लोग बिगड़ गए, क्यों बिगड़े, क्योंकि ग्रह बिगड़ गए, इसी कारण क्या हो गए, मनुष्य बिगड़े। अगर उस ग्रह को आप पावन बनाने की सेवा करेंगे तो कितना अच्छा होगा। और सारा दिन भी यही कॉन्शियस में रखना है कि आज मैं मंगल ग्रह पर हूं, तो भले आप यहां होते हो भी आपका कॉन्शियस कहां रहेगा, जैसे मंगल ग्रह पर। तो इस तरह से बुधवार के दिन बुध ग्रह पर जाओ, गुरुवार के दिन गुरु ग्रह पर जाओ, शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह पर जाओ, शनिवार के दिन शनि ग्रह, रविवार कोई ग्रह नहीं है, छुट्टी मनाओ, परमधाम में रहो। उसके बाद सोमवार को भी शायद कोई ग्रह नहीं होता, सोमवार क्या करो, फरिश्ता बन करके सृष्टि पर आओ। तो इस तरह से नवीनता होगी। उसके बाद जैसे कभी बाबा कहते कि बच्चे तुम मेरी कौन हो, जैसे लौकिक में भी समझो कोई प्रियतम होते हैं, उनको कैसे याद आते हैं, तो समझो जब उनको उसका प्रियतम का फोन आता है कि ऐसा ऐसा आप मेरे को मिलने के लिए आना, तो उसको कितना खुशी होती है कि आज मुझे प्रियतम ने बुलाया है तो मैं मुझे मिलने के लिए जाऊंगी, लेकिन मैं कौन सा ड्रेस पहन करके जाऊंगी। तो उसको सारा दिन वो पढ़ाई पढ़ रहे या कुछ भी कर्म कर रहे, उसको क्या याद आता है, मुझे प्रियतम ने बुलाया है, मुझे कौन सा ड्रेस पहन कर जाना है। घड़ी भी देखेंगे उसको याद आएगा, अभी 2 घंटे के बाद जाना है, 3 घंटे के बाद जाना है, उसको बार बार क्या याद आता है। तो सब कहेंगे क्या बात है, आप पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन कुछ आपका मन बुद्धि कहीं और है लगेगा। तो इसी तरह कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, कितना बजे जाना है, सब याद रहता है सारा दिन, उसका योग किसे लगता है, उसके साथ लगता है। इसी तरह हमें भी समझो हमारा प्रियतम बाबा है, तो जैसे उसको कहो कि प्रियतम आज मुझे आपके पास मिलने के लिए आना है, लेकिन रोज तो परमधाम में आते हैं, आज आप क्या करना, थोड़ा चंद्रमा के ऊपर आना, स्थान बताया, जैसे उसने कहते ना जैसे बगीचे में आना, कहीं आना, उसको बराबर वो याद रहता है। इसी तरह उसको कहो कि आज मैं अबे क्या करो, आप चंद्रमा के ऊपर आओ। तो जैसे जब भी सारा दिन आप कर्म कर रहे, मुझे प्रियतम ने क्या किया है, मुझे आज चंद्रमा के ऊपर मिलने के लिए बुलाए, मुझे मेरे प्रियतम के पास जाना है, मेरा प्रियतम कैसा है, संसार में और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे सुंदर कौन है? वो सत्यम शिवम सुंदरम, उसने मुझे पसंद किया है। तो इसीलिए सारा दिन आज मुझे किसी के शरीर को निहारना नहीं है, किसी की सुंदरता को नहीं देखना, किसी के ऊपर प्रभावित नहीं होना, नहीं तो वो देख लेगा। इसे अगर कोई प्रियतम जो किसी औरों के साथ बात करे और किसी उसने देखा, उसके प्रियतम ने, वो कहेगा देखा मैंने इतना बजे देखा था तुम किसी से बात कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। तो इसी तरह सारा दिन मुझे किसी के तरफ भी नहीं देखना, किसी के तरफ प्रभावित नहीं होना, नहीं तो शाम को मुझे वो प्रियतम प्यार नहीं करेगा। इसी तरह सारा दिन यही अभ्यास करना है। और जब आप घड़ी देखेंगे, अभी बस 2 घंटे 6 बजे उसने बुलाया, बस 4 घंटा बाकी है, अच्छा क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या करेंगे, सारा दिन सोचते रहो उसके बारे में, तो बाबा की याद सहज रहेगी। फिर जब शाम को योग में बैठेंगे तो फरिश्ता ड्रेस पहनो, अच्छी तरह क्या करो, ज्ञान दर्पण में अपना चेहरा देखो, रूहानी मुस्कुराहट और रूहानी दृष्टि, ये सब कुछ आत्मिक स्मृति का तिलक लगा दो, सब तिलक वगैरह लगा करके फरिश्ता ड्रेस पहन करके चमकीला, ताकि वो प्रियतम प्रभावित हो जाए आपके ऊपर। ऐसा नहीं सीधा निकल करके चले जाओ, ड्रेस वगैरह देखो, नहीं तो ड्रेस अगर आपका चमड़ी वाला ड्रेस है और चमड़ी वाला ड्रेस देख करके वो और ही भाग जाएगा, कहेगा ये क्या है। तो इसीलिए ड्रेस फरिश्ता पहनो, आत्मिक स्मृति की बिंदी लगाओ, रूहानी मुस्कुराहट, सब सज धज करके क्या करो, फिर बुद्धि रूपी विमान में बैठो और फिर बुद्धि रूपी विमान को कहो कि आज परमधाम में नहीं चंद्रमा के ऊपर लेके चलना, क्योंकि मेरा प्रियतम वहां आने वाला है। फिर आप निकल करके यात्रा शुरू करो और यात्रा में जाते समय सोचो कि वहां मेरा भाग्य कितना मुझे प्रियतम सुंदर मिला हुआ है, ये साइड सीन भी कितनी अच्छी है, और फ्री में कोई टिकट वगैरह कुछ नहीं है, टिकट है कोई टिकट नहीं कुछ नहीं, बस जा रहे, तो जाते ही वो पहले आकर के तैयार हुआ है, तैयार गुलदस्ता लेकर के आपका इंतजार करते बैठा हुआ है। तो जब आप जाते ही उसने गुलदस्ता दिया, स्वागत किया, दृष्टि दिया, और उसके बाद फिर आप उसके गोदी में, बाप दादा के गोदी में सिर रख करके फिर आप उसको पूछ रहे, अच्छा ये बताओ आपने मुझे कैसे पसंद किया? तो वो कह रहे कि आप जानते नहीं, आप मुझे बहुत ढूंढ रहे थे, मंदिर में जाते थे, मेले में जाते थे, इधर उधर जाते थे, मैं तो सब छिप करके देख रहा था, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है इसको कोई और पसंद आए, इसलिए मैंने और किससे इसका प्यार होगा, तो इसलिए देखा कि भाई, लेकिन आपने मुझे 63 जन्म से बहुत ढूंढा, लेकिन लास्ट में आप थक गए, इसलिए मैंने सोचा कि ज्यादा थकाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं फिर आपके पास आया और आपके लिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला, आपके लिए कई बहनों को सरेंडर कर दिया, आपके लिए वो झोन खोला, फिर उसके बाद आपके गांव में वहां सेंटर खोला, फिर बहुत बड़ा एक मेला लगाया और मेले के लिए प्रदर्शनी लगाई, फिर आप उस मेले में आए थे, जब आपने मेरा फोटो देखा तब फिर आपने पहचान लिया, और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपसे ये प्यार किया। अच्छा फिर कहो कि अच्छा भाई कल कहाँ मिलेंगे, वायदा करके चलो कल परमधाम में ही मिलेंगे, और कितना बजे आऊंगा, तो इस तरह से बात करके फिर बाय बाय करके, क्योंकि अगर आपके पास ही बैठेंगे सब नीचे मुझे डांटी मारेंगे, आप वहीं बैठे रहते मतलब योग में बैठेंगे तो सब क्या कहेंगे, इसलिए अच्छा बाय बाय फिर आते हैं करके फिर आ जाओ। फिर आने के बाद सारा दिन याद रखो कि मुझे मैं मेरे प्रियतम से मिल करके आई, मुझे उसने उसके साथ प्यार है, उसकी निशानी है कौन सा ब्याज है, उसकी निशानी, और उसने मुझे ब्याज पहना दिया, उसके खातिर मैंने ये सफेद ड्रेस पहना है, क्योंकि मेरे प्रियतम को कोई होते ना जब ड्रेस देखेंगे कहेंगे मेरे प्रियतम को बहुत पसंद आई है, इसीलिए मैंने ये पहना हुआ है। उसके बाद कोई सौगात दिए है, चाल दी है, उसने मुझे मधुवन में वो आया था सामने, उसने मुझे गिफ्ट की प्यार की निशानियां दी है। और जैसे प्रियतम अगर समझो घर में प्रियतम अच्छा है, लेकिन उसके घर में रहने वाले बहुत खराब है लोग, तो वो डरती नहीं, वो कहती मेरा प्रियतम अच्छा है ना, बाकी कैसे भी हमें क्या लेना देना। तो इसी तरह कोई ब्राह्मण परिवार कैसा भी हमें क्या लेना देना, हमें क्या है वो प्रियतम ठीक है ना बस। तो इसी तरह ये है योग, ऐसे हमें योग में क्या करना है, इस लौकिक बातों को भी अगर अलौकिक बना करके आप अगर पुरुषार्थ करते हैं, सोमान लेते हैं, तो बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा। हम सोचते हैं क्या बातें करनी होती है, क्या क्या सोचना होता है, कुछ नहीं, योग हमारे लिए बहुत क्या है, इजी है, ऐसे ऐसे हमें क्या करना है बातें, और सारा दिन भी आपको सो मान लेने से कर्म में भी बाबा की याद रहेगी, साथ में जब बैठ करके योग करते उसी समय भी आपको अच्छी तरह बाबा की याद रहेगी। ऐसे हमें रोज वैरायटी सोमान लेना है। ये तो मैंने 2-3 एग्जांपल सुनाए, ऐसे हमने विजनों के जो अभ्यास है 2-3 हजार विजनों के ऐसे नए नए अभ्यास के, तो ऐसे आप भी ऐसे सोच सकते नए नए ढंग से, और ऐसे हमें क्या करना है अभ्यास करना है। तो आपको योग का टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा, और केवल यही बातें नहीं, योग के लिए और भी कई बातें जरूरी है, लेकिन अभी तो समय की सीमा, इसीलिए आपको वो बातें भी कभी फिर बाद में सुनाएंगे, क्योंकि वो बातें नहीं तो भी आपको योग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उन बातों से आपको भी फ्री रहना पड़ेगा। जैसे जैसे अभी एक बाबा ने इसी मुरली में एक धारणा बताई थी, बच्चे किसी का परचिंतन छोड़ो, पर दर्शन छोड़ो और पर मत छोड़ो, ये भी योग से कनेक्टेड है। अगर ये समझो धारणा आपके जीवन में नहीं है और आप बहुत चाहते हैं कि योग लगाना, तो भी नहीं लगाएंगे। बाबा क्यों ये धारणा बीच बीच में बोलते हैं? क्योंकि इसका और योग का कनेक्शन है। अगर समझो आपने परचिंतन करते हैं, क्यों बाबा ने बोला कि बच्चे सबके ओरिजिनल स्वरूप को देखो, आत्मा के सबके ओरिजिनल संस्कार को देखो, क्यों बोला है? अगर ओरिजिनल संस्कारों को नहीं देखेंगे तो बाबा याद आने के बजाय वो व्यक्ति याद आएगा, आपको निर्विघ्न नहीं बनेंगे। तो इसीलिए समझो अगर किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, अगर बच्चों को कहेंगे ये बच्चा ठीक नहीं है, नालायक है, ऐसा है वैसा ही, और शाम को आकर के बाबा कहेंगे उसका पिताजी बैठा है वहां, उसको कहेंगे आप बहुत अच्छा है, कितने अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसकी महिमा करेंगे, पिताजी को अच्छा लगेगा, कहेगा देखो तुमने तो मेरे बच्चे की गिलानी की और मेरे को अच्छा अच्छा बोलता है। तो इसी तरह सारा दिन अगर ये कहेंगे ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसे ऐसा करता है वैसा करता है, और शाम को आकर के कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दही के सागर, बाबा कहेंगे तुम यहां से भाग जाओ, मेरी महिमा नहीं चाहिए, तुमने तो मेरे बच्चों की गिलानी की, मेरे को अच्छा अच्छा बोलता है। क्योंकि सारे संसार में जितने भी लोग रहते किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। बाबा तो इन बच्चों को इतने अच्छे अच्छे टाइटल देता है, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। हम बोलते हैं तो इसको कोई मैनर्स नहीं, पता नहीं कैसा ज्ञान में चलता है, हम ऐसे टाइटल देते हैं उनको। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैंने चुने हुए आत्मा को तुम अगर ऐसे वैसे कहेंगे तो मैं तुम्हें कैसा प्यार करूं। इसीलिए बाबा के जितने भी बच्चे हैं उनको कभी भी उनका कभी भी परचिंतन नहीं करना। तो ऐसे ये बातें हमें योग करने के लिए, ऐसी कई बातें हैं लेकिन अभी ये सुनाएंगे नहीं, तो ये कुछ बातें भी धारणा के लिए जरूरी है जिससे आपको योग की बहुत अच्छी अनुभूति कर सकते हैं। तो योग में हमें क्या बोलना है, कैसे बैठना है, मन कहाँ लगाना है, बुद्धि कहाँ लगाना है, सोमानों के अभ्यास कैसे करना है, और योग में हूं या नहीं हूं कैसे परखना है, वो सब बातें आपको सुनाई। और भी कुछ योग के बारे में कुछ क्वेश्चन हो गए तो भी आप 10 मिनट बाकी सुना सकते हैं, फिर पूरा करेंगे। ओम शांति। कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, किसी का कुछ और क्वेश्चन है? विकर्म विनाश हो रहा है योग में, उस समय आपकी आत्मिक स्थिति रहेगी, आत्माभिमानी स्थिति रहेगी, और उस समय आपको बिल्कुल ही हल्का अनुभव होगा। और जब भी आप योग करने के लिए बैठेंगे आपको जैसे नीचे खींचते, मतलब जैसे कई लोगों को परमधाम में ज्यादा समय रहने का, मतलब चाहते हैं कि परमधाम में रहे लेकिन ज्यादा समय नहीं रह पाते क्योंकि विकर्म है, वो तुरंत नीचे आएंगे। तो इसीलिए हमारा योग लग रहा है इसके नीचे नहीं, और जब भी योग लगा रहे उस समय आप जब योग लगाएंगे बहुत अच्छा आनंद आएगा। कई भाई बहनों को क्या होता है, जब योग लगाने के लिए बैठेंगे तुरंत 2 मिनट में जैसे किसी के सिर पर बोझ होता है, उसका सिर ऊपर नहीं होता लेकिन सिर कहाँ होता है? तो ये निशानी है, अगर योग में नींद आते हैं ये भी विकर्मों की निशानी है। वैसे और भी उसका कारण होगा, किसी को थकावट आते तो भी नींद आते हैं, लेकिन विकर्म है तो उसका योग नहीं लगेगा। विकर्म होगा तो योग में तुरंत वो नींद भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें विकर्म विनाश हो गए उसकी आत्मिक स्थिति रहेगी, हमारे कर्म भी अच्छे बनते रहेंगे, हल्केपन की अनुभूति भी होगी, और आत्मा की ज्योति जागृत हुई होगी या अनुभव होगा। इसलिए हमारे पर चिंतन माना दूसरे का चिंतन करना, इसको कहते पर चिंतन, माना पर मतलब दूसरा, चिंतन मतलब उसके बारे में चिंतन करना। करना नहीं चाहिए, करना चाहिए नहीं, सो चिंतन करना चाहिए। पर चिंतन, हाँ, पर चिंतन नहीं करना चाहिए, सो चिंतन करना चाहिए। माना सो चिंतन भी क्या होता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा अपना स्वरूप क्या है उसका। पर दर्शन माना दूसरे का दर्शन नहीं करना है। जब हम योग में बैठते हैं, दूसरे व्यक्ति अगर दिखाई पड़ता है उसकी याद आते हैं, इसको कहेंगे पर दर्शन। हमें स्व दर्शन करना है, मतलब स्वयं की आत्मा दिखाई पड़े, बाबा दिखाई पड़े, परम धाम दिखाई पड़े, ये कहेंगे स्व दर्शन। और दूसरा व्यक्ति दिखाई पड़े, उसने क्या बोला, क्यों बोला, तो ये है पर दर्शन। सोमान तो अलग चीज है, फरिश्ता स्वरूप अलग चीज। सोमान माना हम उस स्थिति में स्थित रहना, सोमान से भी हम फरिश्ता स्थिति अनुभूति कर सकते हैं। सोमान में रहेंगे तो फरिश्ता स्थिति अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि सोमान ही हमें ऊपर नशे में लेके जाते हैं, इस शरीर से अलग अनुभूति कराते। अशरीरी स्थिति में स्थित रहने के लिए पहले तो हमें, जब हम इस शरीर में रहते हुए भी आत्मिक स्थिति का अभ्यास हो, पहले हमें आत्मिक, पहला है आत्माभिमान स्थिति, उसके बाद आए फरिश्ता स्थिति, उसके बाद उससे अलग अशरीरी, और उसके बाद बिंदुरूप स्थिति, ये स्टेज है। तो जब हम योग का अभ्यास करते हैं, अशरीरी बनने के लिए डायरेक्ट अशरीरी ना बने, लेकिन जब योग में बैठते हैं पहले 10-15 मिनट क्या करना है, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। मैं ऊपर से आई हूँ, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में बैठी हूँ, मेरा यह शरीर है, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में बैठ करके इन हाथों के द्वारा कर्म करती हूँ, मैं इन मुख के द्वारा बोलती हूँ, आंखों के द्वारा देखती हूँ, और ऐसी मैं आत्मा ऊपर से आई हूँ, तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, प्रकाश में शरीर धारण करके जा रही हूँ, जैसा मेरा यह शरीर है ऐसा मेरा प्रकाश में शरीर भी है, और ब्रह्मा बाबा उसको भी प्रकाश में शरीर है, तो जैसे उस प्रकाश में दुनिया में। और जब वहां जाते हैं तो उसके बाद जब वो गहरी आपकी रूह रूहान चलती है, उसके बाद वो आपका अशरीर स्थिति, और उसके बाद फिर जब वो रूह रूहान गहराई पर होते हैं तो हमारा ये शरीर भी भूल जाता है, केवल मैं आत्मा और वो बाबा, वो बिंदुरूप स्थिति थी। झाटकू बनना मतलब क्या करना, झाटकू मतलब जो बाबा ने एक बार कहा, जैसे कल कोई क्लास करा रहा था उस समय उन्होंने कहा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्रोध को छोड़ूंगा, या किसी ने और एक एग्जाम्पल दिया था ना, जब कोई भाई का एग्जाम्पल दिया था, मधुवन से वापिस गया, उसने ये सोचा कि चाहे मर जाओ मिट जाओ लेकिन मैं बाबा के ज्ञान पर, बाबा के श्रीमत पर जरूर चलूंगा। एक बार एक बात लिया, उसके बाद वो सदा के लिए, उसको कहते हैं झटकू। एक बात समझो, एक कोई आपकी गलती होगी, दोबारा उस गलती को रिपीट न करना, इसको कहेंगे झटकू। और वही गलती बार बार कहता करता रहा, अभी नया साल आ गया, फिर प्रतिज्ञा की, फिर वापस गए, फिर गलत कर्म किया, फिर सोचेंगे अरे फिर मधुवन में जाएंगे, फिर प्रतिज्ञा करेंगे, तो इसको झटकू नहीं कहेंगे। माना बार बार प्रतिज्ञा कर रहे, बार बार छोड़ने की कोशिश कर रहे, उसको झटकू नहीं कहेंगे। संपूर्ण ब्रह्मा और वही अव्यक्त ब्रह्मा, वही बाकी साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा, उसमें दोनों में अंतर है। अच्छा एक प्रश्न है, क्या बीज रूप स्थिति के लिए वर्णन करना है तो अच्छा बीज रूप स्थिति क्या है, तो बीज रूप स्थिति अगर बनानी है उसके लिए सारा दिन जब हम कर्म करते हैं, चलते फिरते, जो सोमान का ना, सोमानों के अभ्यास, देखते हुए न देखने के अभ्यास, कोई भी संकल्प, जितने सारा दिन आपकी एकाग्रता की स्थिति है, एकाग्रता की स्थिति, सारा दिन सोल कॉन्शियस अवस्था, ये सब बातें बीजरूप स्थिति के लिए काम आते। तो बीजरूप स्थिति आपको उसके लिए सारा दिन कर्मों में क्या करना है आपको, ये स्थिति जरूर है। अगर जिसके बहुत संकल्प चलते हैं, कोई किसी ने कुछ बोला अपमान किया उसके संकल्प चलते हैं, तो वो बीजरूप स्थिति में नहीं स्थित रह सकेगा, इसीलिए ये सब बातें जरूरी है। जैसे एकाग्रता भी जरूरी है बीजरूप स्थिति, सारा दिन एकाग्रता भंग न हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आए, तो वो फिर सारा दिन का फाउंडेशन, फिर आपको जब योग में बैठेंगे तो आपकी वो स्थिति आएगी, आपको कोई बातें याद नहीं आएगी, आपको वो परमधाम याद आएगा, उपराम रहेंगे, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी, लेकिन सारा दिन आपको वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपकी वो बीजरूप स्थिति आएगी। और एकाग्रता तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी आपकी एकाग्रता होगी, जैसे पवित्र रहना, एकाग्रता जितनी होगी पवित्र रहना आपके लिए बहुत इजीली होगा। अगर आपकी एकाग्रता नहीं है, माना यहां एकाग्रता नहीं है, तो उससे क्या होगा, क्योंकि हम इतना भोजन खाते हैं, इतना खाना वगैरह खाते हैं, इससे जैसे हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें बनती रहते हैं, ये इम्प्यूरिटी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जब आप एकाग्रता का अभ्यास करते हैं बैठ करके, उससे वो आपकी एकाग्रता के कारण वो जो शक्ति है उसे एक तेज निर्माण होता है, जिसे ज्योति जलते, जिससे फिर आपको, और जिस समय आप कुछ चार पांच दिन योग नहीं करेंगे तो आप बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, फिर आपकी पवित्रता भंग होने की संभावना है, फिर आपको बॉडी कॉन्शियस, फिर देह के आकर्षण में जाएंगे, देह के संबंध में जाएंगे। इसीलिए बाबा क्यों बोलते हैं, बच्चे रोज योग करो, क्योंकि योग करेंगे जो आप भोजन करते हैं, जो ये कहते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, वो शक्ति उससे योग के द्वारा जलेगी, और उससे क्या हो जाएगा, तेज निर्माण होगा। बस पूरा करेंगे भाई, लास्ट अभी 12:30 बजने जा रहे, ये तो कौन सी भाषा लिखी, इन विच स्टेज रूरवान, रूरवान मतलब अव्यक्त स्थिति में हम जब जाते हैं वहां रूरवान कर सकते हैं, मतलब प्रकाशमय शरीर बाबा का भी और हमारा भी, उस समय रूरवान कर सकते, परम धाम में कोई भी प्रकार के हम रूरवान नहीं कर सकते, उस समय हमारे संकल्प है और उसमें स्थित है। चलो अभी प्रश्न बंद करेंगे, अभी 2-3 मिनट योग करेंगे, जिसके किसी के प्रश्न हो गए फिर बैठेंगे, फिर उस समय सॉल्व करेंगे, नहीं फिर बाद में योग के बाद 3 मिनट योग करेंगे, उसके बाद।